सब की गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की उपस्थित भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग। अहो, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर, श्री रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एकाएक कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सबका वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं? गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर शिला नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। गौरा भक्ता वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरा भक्ता वृंदा हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन कक्षा में। और आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, आज शिला व्यास देव जी का प्राकट्य दिवस है, और आज के दिन ही शिला सनातन गोस्वामी, छह गोस्वामियों में से एक, वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो छह गोस्वामियों में से जो सबसे वरिष्ठ थे शिला सनातन गोस्वामी, आज उनका तिरुभाव दिवस भी है। और आज से चतुर्मास्य का भी प्रारंभ हो रहा है, तो जो आज की कक्षा रहेगी वो शिला सनातन गोस्वामी के जीवन और उनके कुछ शिक्षाओं के ऊपर आधारित रहेगी। तो बोर्ड पर ये प्यार लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5, इसका प्यार संख्या 203। सनातन कृपाय पाइनु भक्ति रस सिद्धांत श्री रूप कृपा पाइनु भक्ति रस प्रांत सनातन कृपाय पाइनु भक्ति रस सिद्धांत श्री रूप कृपा पाइनु भक्ति रस प्रांत सनातन कृपा पाइनु भक्ति रस सिद्धांत श्री रूप कृपा पाइनु भक्ति रस प्रांत धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की। सनातन कृपाय, सनातन गोस्वामी की कृपा से पाइनु मैंने पाया भक्ति रस सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत श्री रूप कृपाय, शिला रूप गोस्वामी की कृपा से पाइनु मैंने पाया भक्ति रस प्रांत, भक्ति रस की सीमा। अनुवाद, सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए हैं, और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया है। कृपया दोहराएं, सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए हैं, और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया है। तात्पर्य, भक्ति विज्ञान के शिक्षक श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से बृहद भागवतामृत अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो कोई भी व्यक्ति भक्त, भक्ति तथा कृष्ण के विषय में जानना चाहता है, उसे ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का एक विशेष भाष्य भी लिखा है, जो दशम टिप्पणी कहलाता है। ये ग्रंथ इतना उत्कृष्ट है कि इसे पढ़कर भगवान कृष्ण की प्रेममय लीलाओं को अत्यंत गहराई से समझा जा सकता है। सनातन गोस्वामी कृत एक अन्य पुस्तक है, हरि भक्ति विलास, जो सभी वर्ग के वैष्णवों, वैष्णव गृहस्थों, वैष्णव ब्रह्मचारियों, वैष्णव वानप्रस्थियों तथा वैष्णव सन्यासियों के लिए विधि विधानों को बताने वाली है। किंतु ये पुस्तक विशेषतया वैष्णव गृहस्थों के लिए लिखी गई थी। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि नामक अपनी स्तुति के छठे श्लोक में सनातन गोस्वामी के प्रति अपने आभार निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। वैराग्य युक्ति भक्ति रसम प्रयत्न रपाय यत्मान भी सुमंधम कृपांभु धीरे पर दुख दुखी सनात स्तम प्रभु माश्रयामी। मैं वैराग्य से युक्त भक्ति रस को पीने के लिए अनिच्छुक था, किंतु सनातन गोस्वामी ने अपनी अहेतु की कृपा से मुझे इसे पीने को बाध्य किया, अन्यथा मैं ऐसा ना कर पाता। क्या पीने को बाध्य किया? वैराग्य से युक्त भक्ति रस। अतएव वह करुणा के सिंधु हैं, वे मुझ जैसे पतित आत्माओं पर विशेष दयालु हैं, अतएव मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके चरणों में सादर नमस्कार करूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत के अंतिम अनुभाग में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और शिलाजीव गोस्वामी का नाम विशेष रूप से वर्णन किया है, और इन तीनों गुरुओं के साथ साथ रघुनाथ दास के भी चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार अर्पण किया है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी सनातन गोस्वामी को भक्ति विज्ञान के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। श्रील रूप गोस्वामी तो भक्ति रसाचार्य कहे गए हैं। उनकी सुप्रसिद्ध कृति भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति विज्ञान है, और इसे पढ़कर भक्ति का अर्थ समझा जा सकता है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध कृति उज्ज्वल नीलमणि है, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण तथा राधा रानी के प्रेम व्यापार तथा दिव्य लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। शिला भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो व्यक्ति एवं यो वेति तत्वता। भगवान का प्राकट्य और उनके कार्यकलाप सभी दिव्य प्रकृति के हैं, और जो इनको समझ जाता है उनका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे शिला सनातन गोस्वामी, इनका प्राकट्य, इनका तिरोभाव और इनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं। ये भगवान के नित्य सिद्ध वैष्णव हैं। बताते हैं जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उनमें जो उनकी प्रमुख मंजरी हैं, रूप मंजरी और रति मंजरी। रूप मंजरी का प्राकट्य होता है रूप गोस्वामी के व्यक्तित्व में, और रति मंजरी प्रकट होती है शिला सनातन गोस्वामी के रूप में। तो शिला प्रभुपाद अक्सर तिरुभाव दिवस पे समझाते थे कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हम आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही कोई बड़े हर्ष से मनाते हैं। ऐसा क्यों? ये बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी का तिरुभाव दिवस है और उसको हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो बताते हैं कि एक साधारण जीव का भी कभी मृत्यु नहीं होती, उनका देह समाप्त हो जाता है, परंतु वो जो जीव है सदा शाश्वत रहता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिसमें प्रभुपाद अक्सर ये कथा बताते थे कि किस प्रकार से एक बार एक साधु पुरुष जा रहे थे और अलग अलग व्यक्तियों को वो अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। जो एक राजकुमार का पुत्र होता है उनको क्या आशीर्वाद देते हैं? चिरंजीव। और एक मुनि के शिष्य होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाए। जो एक कसाई होता है उसको आशीर्वाद देते हैं मां जीवो मां मरो, तुम ना जियो ना मरो। और एक जो शुद्ध भक्त होता है उनको क्या आशीर्वाद देते हैं? जीवो वा मरो वा, कि तुम्हारा जीना और तुम्हारी मृत्यु एक बराबर है। क्यों? जीते समय भी आप कृष्ण की सेवा में नियुक्त हैं, और इस देह के उपरांत जब तिरुभाव के बाद भी वो भगवान कृष्ण की नित्य लीला में उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए हम जो महान वैष्णव आचार्य हैं उनका तिरुभाव दिवस मनाते हैं, और जो उनका महान जो योग जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो उनके जीवन के अंत तक पूरे संसार के सामने प्रकट होता है। तो आज जो शिला सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है, ये हम जितने भी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भक्त हैं या पूरे संसार में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन अपने अलग अलग पार्षदों से एक अलग अलग चीजों को अकम्प्लिश किया और अलग अलग गुणों को प्रकट किया। तो बताते हैं उन्होंने विशेषकर अपने चार भक्तों के माध्यम से चार गुणों को प्रकट किया। कौन कौन से? इसमें सबसे पहले बताते हैं शीला रामानंद राय। रामानंद राय से उन्होंने क्या प्रकट किया? इंद्रिय संयम। इस पूरी सृष्टि में जो सबसे टॉप मोस्ट ऑर्डर का इंद्रिय संयम एग्जिस्ट कर सकता है वो उन्होंने दिखाया रामानंद राय के चरित्र से, कि कैसे वो देवदासियों का जो जगन्नाथ जी की सेवा में नियुक्त हैं उनका श्रृंगार करते थे, उनका स्नान कराते थे, उनका मसाज कराते थे, फिर भी उनके मन में रंश मात्र भी विकृति नहीं होती थी। उसके बाद दामोदर पंडित, उनसे उन्होंने क्या प्रकट किया? इंग्लिश में वर्ड है न्यूट्रैलिटी। उनका हृदय इतना शुद्ध था और इतना ट्रांसपेरेंट था कि अगर वो किसी भी वैष्णव को देखते थे कि जो वैष्णव सदाचार का नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो तुरंत जाके करुणावश उनको बता देते थे। और वैष्णवों को ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके चरित्र में अगर देखते थे तो उनको भी वो बताते थे। तो न्यूट्रैलिटी। फिर शीला हरिदास ठाकुर, उनसे उन्होंने क्या प्रकट किया? टॉलरेंस, सहनशीलता। कि किस प्रकार से 22 बाजार में उनको पीटे जाने के बावजूद उनके हृदय से क्या प्रार्थना थी? जो उनको पीट रहे थे, जो उनको मार रहे थे, जान से मारने की प्रयास कर रहे थे, उनके लिए करुणा, इतनी सही सहिष्णुता थी। और चौथे भक्त हैं शिला सनातन गोस्वामी। इनके चरित्र से उन्होंने किस चीज को प्रकट किया? विनम्रता को। विनम्रता का क्या एपिटोम हो सकता है, क्या चरम सीमा हो सकती है, ये उन्होंने प्रकट किया शिला सनातन गोस्वामी के शिक्षाओं से। और शिला प्रभुपाद ने भी अक्सर अपने पूरे लेक्चर्स में, अपने बुक्स में, अपने लेटर्स में, कन्वर्सेशन में शिला सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र को रेफरेंस लेते हुए अलग अलग पॉइंट्स को एस्टैब्लिश किया। बहुत सारे ऐसे प्यार हैं जिसमें चैतन्य चरितामृत में शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया, परंतु उन्हीं प्यारों के रेफरेंस को उन्होंने लेटर्स में लिख के दिया है। एक उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से जब शिला सनातन गोस्वामी अपना सब कुछ छोड़कर, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, बट वो पूरी जा रहे थे, वृंदावन से पूरी जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने कहीं का पानी पी लिया था तो उनके इतना स्किन डिजीज हो गया था, इतना पस और ब्लड उनके शरीर से बहता जा रहा था। और तो सनातन गोस्वामी को लगता था कि ऐसे शरीर का क्या फायदा, कि जिस शरीर से महाप्रभु की सेवा नहीं की जाए। तो उन्होंने मन में संकल्प बना लिया था कि जैसे मैं पूरी जाऊंगा रथ यात्रा वाले दिन सभी भक्तों के समांग रथ यात्रा में अपने आप को गिरा के आत्महत्या कर लूंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके इस भाव को भांप गए थे और उन्होंने उनको बहुत डांटा कि जो तुम्हारा, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये तुमने जब समर्पित कर दिया, ये किसका शरीर है? ये कृष्ण का शरीर है और तुम्हारा कोई हक नहीं है इसको खत्म करने का। जय श्री श्री राधा राधिका रमण, जय श्री श्री कृष्ण बलराम गौ नित्याय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो शिला प्रभुपाद शिला अपने शिष्य रामानंद राय को एक लेटर लिखते हैं और उसमें उनसे पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने कई सारी चीजें पिछले लेटर में शिला प्रभुपाद से लिखी थी और एग्जैक्ट आपको पढ़ के सुनाते हैं। बहुत ही रुचिकर शिला प्रभुपाद ने उनको ये पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि आपका करंट स्थिति कैसे, स्वास्थ्य की कैसी है, मुझे बताओ अगर तुम्हारे कुछ इंप्रूवमेंट है या तुम्हें अभी भी स्वास्थ्य में दिक्कत है। हमें हमेशा समझना चाहिए कि ये शरीर है इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, ये कृष्ण की प्रॉपर्टी है और कृष्ण की अच्छी से सेवा करने के लिए हमें शरीर का निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम सनातन गोस्वामी के जीवन से ये सीखते हैं किस प्रकार से वो इतने बीमार हो गए थे और उनके शरीर से खून निकलता था, परंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को हमेशा आलिंगन कर लेते थे। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि वह आत्महत्या करेंगे, परंतु उनके इस भाव को चैतन्य महाप्रभु भाप गए और उन्होंने उन्हें कहा कि तुम्हारा कोई हक नहीं है शरीर को अंत करने का, जब ये तुम्हारा शरीर है ही नहीं, कृष्ण का है, तो तुम कैसे चुन सकते हो शरीर के साथ क्या करना है। तो इसलिए तुम्हें अपने शरीर को अपकीप को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज द लेसन वी गेट फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य एंड सनातन गोस्वामी. तो शिला प्रभुपाद उनके सनातन गोस्वामी के इस पास टाइम को लेके अपने एक शिष्य को स्वास्थ्य के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं. तो जो शिला सनातन गोस्वामी जी का जो बहुत डिटेल में इनका डिस्क्रिप्शन है लाइफ का, अलग अलग ग्रंथों में हमें बहुत ही विस्तृत रूप से इनकी जानकारी मिलती है. तो मैं सिर्फ उन पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा जिसको शिला प्रभुपाद जी ने वर्णित किया है अपनी पुस्तकों में, क्योंकि जितना समय है उसमें चर्चा करेंगे, और कुछ मुख्य शिक्षा उनके जो जीवन से मिलती हैं. तो जब ये छोटे ही थे तो सनातन गोस्वामी, इनका एक्चुअल नेम क्या था, संतोष, अनुपम और अमर, ये तीन भाई थे जो बाद में जाके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी बने. तो जब ये छोटे बच्चे थे तब उनको एक स्वप्न आया, और स्वप्न में ब्राह्मण ने उनको श्रीमद् भागवतम प्रदान की. और जब ये स्वप्न से जागे तो देखा ना ब्राह्मण थे ना श्रीमद् भागवतम थे, परंतु तभी उनके दरवाजे पे नौक हुई, वही ब्राह्मण जिन्होंने सपने में देखे थे वो आते हैं और इनको श्रीमद् भागवतम प्रदान करते हैं. और तब से इनका नियत उनका जीवन का अंग था श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना. श्रीमद् भागवतम बताते हैं शिला सनातन गोस्वामी का पूरा जीवन था, प्रतिदिन वो श्रीमद् भागवतम के बहुत गहराई से अध्ययन करते थे और उस पर चर्चा करते थे. सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी अपने समय के इतने प्रखर पंडित थे, विशेषकर संस्कृत भाषा में, बंगला भाषा में और पर्शियन भाषा में. और जो वहां का राजा था नवाब हुसैन शाह, उनके जो सलाहकार थे उन्होंने बताया कि अगर आप इनको अपने नौकरी में रख लेते हैं जो पूरा हिंदू समाज है उनको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि इनका चरित्र और इनके गुण ऐसे थे, ये इतने विनम्र थे और सभी को इतने प्रिय थे कि प्रत्येक व्यक्ति इनके दिव्य गुणों से आकर्षित था, हर कोई इनको फॉलो करता था. और ये इतने दक्ष थे अपने ओपिनियन प्रेजेंट करने में और किसी भी चीज पे सलाह देने के लिए कि हर कोई इनको फॉलो करता था. इनका बहुत ही महान इन्फ्लुएंस था, सिर्फ इंटेलेक्ट के दौर पे नहीं परंतु वैष्णव गुणों के आधार पर. तो नवाब हुसैन शाह इनके पास गए और ये कर्नाटका से सारस्वत परिवार जो गोत्र है उसमें थे. सारस्वत जो गोत्र है वो सबसे उच्च श्रेणी का गोत्र बताया गया है ब्राह्मण वर्ग में. तो वो एक मुसलमान था और वो इन ब्राह्मणों को अप्रोच कर रहा था कि तुम मेरे यहां नौकरी कर लो, अन्यथा अगर तुम मेरे इस प्रपोजल को निग्लेक्ट करते हो, नहीं मानते, तो मैं तुम्हें तो जान से मार ही दूंगा, इन सारे ब्राह्मणों की हत्या करूंगा और सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा. और उस समय ऐसा रिवाज था कि इस प्रकार का सिस्टम था, अगर कोई भी हिंदू जाति का कोई भी व्यक्ति और विशेषकर इस गोत्र का व्यक्ति मुस्लिम की परछाई भी अगर उसके शरीर पर पड़ जाए वो तुरंत जाकर गंगा में स्नान करता था. अगर उनके वहां नौकरी कर ले तो उनका पूरे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था. फिर भी इन और लोगों की सेवा के लिए और करुणा के लिए उनको ये प्रस्ताव मानना पड़ा. और इनका जो कैपिटल था उस नवाब हुसैन शाह का वो रामकेली में था. आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व अमेरिका या लंदन या यूरोप ये सब सबसे रिच देश नहीं थे. उस समय सबसे अमीर देश कौन सा था, भारत. और भारत में भी सबसे अमीर जो प्रांत है वो कौन सा था, बंगाल. और उसका जो राजा था उन्होंने इनको फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया. और यही नहीं, उनको डाबीर खास और साकिर मलक का उपाधि टाइटल से उनको अवार्ड किया. ये उस समय बहुत बड़ी बात थी कि एक मुस्लिम राजा एक हिंदुओं को अपने यहां पे टॉप मोस्ट पोजीशन दे रहा है और उनको टाइटल अवार्ड कर रहा है, जबकि वो पूरी रूप से परिवर्तित नहीं हुए, वो अपने ही धर्म का पालन करते थे. और नवाब हुसैन शाह इतना प्रभावित था उनकी दक्षता से और इतना प्रभावित था उनके चरित्र से कि वह उनको अपना छोटा भाई के रूप में स्वीकार करता था और इसलिए उन्होंने अपने उसका एक ही कार्य था, अलग अलग राज्य में जाओ, उनको कॉन्कर करो और अपने राज्य के साथ मिलाओ। जो उसका पूरा मेंटेनेंस था वो किन के अंडर था? डबीर खास और शाकर मलिक, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो जब ये रामकेली में थे, इनका पूरा अपने अपने एक बड़े बड़े महल थे, और रामकेली में भी उन महलों के अंदर इन्होंने एक तरह से अलग अलग कुंड स्थापित किए थे, श्याम कुंड, राधा कुंड, और पूरा गुप्त वृंदावन का जैसा जो एनवायरमेंट है वो क्रिएट किया था। और वहां पे उन्होंने एक ऑडिटोरियम बनवाया जहां पे पूरे देश से अलग अलग ब्राह्मण आते थे और श्रीमद् भागवतम पे चर्चा होती थी। और बताते हैं हालांकि ये ऐसी पोस्ट पर थे, परंतु इन्होंने आज तक किसी को भी हल्का सा दुख नहीं पहुंचाया, किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं किया, ये इनका महान गुण था। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हें अपना जीवन इस प्रकार व्यर्थ कार्यों में व्यय नहीं करना चाहिए, तुम श्री वृंदावन धाम जाओ। तो जब सनातन गोस्वामी उठे, उन्होंने रूप गोस्वामी से इस बात की चर्चा की, तब डाबीर खास शाकर मलिक थे, तब तक ये अभी तक उनको ये नाम नहीं मिले थे। तो डाबीर खास जो रूप गोस्वामी, उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और ये दोनों भाई बहुत ही लौल्यता से श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने की आकांक्षा करते थे, परंतु कैसे भेंट करें। तो ये अपनी माँ के पास गए और उन्होंने उनसे सलाह मांगी, और उन्होंने उनको सलाह दी कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखिए। तो ये अलग अलग पत्र लिखते थे कि किस प्रकार से हम पूर्ण रूप से आपको शरणागत होना चाहते हैं। पहला पत्र लिखा, कोई रिप्लाई नहीं, दूसरा पत्र, कोई रिप्लाई नहीं, कई पत्र लिख गए, रिप्लाई नहीं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का एक दिन एक रिप्लाई आया, और उस रिप्लाई में महाप्रभु ने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा था, और क्या एक उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा जिस प्रकार एक पत्नी जिसका संबंध एक अपने प्रेमी से है, वो अपने घर का काम और सावधानी से करती है ताकि पति को शक ना हो, परंतु हृदय के अंदर वो सदैव किसका स्मरण करती है, अपने प्रेमी का। उसी प्रकार से आपको, तो वो इस एग्जाम्पल से समझ गए कि महाप्रभु की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि हम अभी अपना जो दायित्व है उसको बहुत सावधानी से करते रहें और अपने हृदय के अंदर सदैव राधा कृष्ण का स्मरण करते रहें और उनकी कृपा की आकांक्षा बनाए रखें। उसके बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद पुरी में स्थित होते हैं, तो बार बार वो वृंदावन, अभी हमने पिछले क्लास में मुरली कृष्ण ने बहुत डिटेल में बताया था किस प्रकार से वो हमेशा वृंदावन जाने की कामना करते रहते हैं, और लगभग 2 साल बाद उनको ये परमिशन मिलती है कि वो वृंदावन जाएं। बीच में भी उन्होंने प्रयास किया वृंदावन जाने का, तो जब वो वृंदावन जा रहे थे तो सभी भक्तों से उन्होंने विदाई ली, और वो बंगाल होते हुए वृंदावन जाना चाहते थे, और वहां उनका मेन उद्देश्य था रामकेली में जाकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय किस प्रकार जाते थे, अपने संन्यास वस्त्रों में, 7 फीट लंबे महाप्रभु, पूरे हरि नाम संकीर्तन में मुग्ध, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाप्रभु का जो संकीर्तन है और उनका जो नृत्य है वो इतना आकर्षक होता था कि जो भी देखता था वो इतना विस्मित हो जाता था, सब कुछ भूल के महाप्रभु के साथ चलना प्रारंभ कर देता था। अभी कभी हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, हमारे हरिनाम संकीर्तन में ऐसी शक्ति नहीं है कि सब कुछ सब भूल के हमारे साथ संकीर्तन ज्वाइन करते चल रहे हैं, परंतु जब महाप्रभु संकीर्तन करते थे उनका जो कीर्तन है इतना भक्तिमय होता था, और उनका जो नृत्य है और जो आसपास परिकर हैं इतने उन्मुक्त होते थे कि कोई भी उस संकीर्तन को देखता था उसको तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था और महाप्रभु के साथ वो ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ना शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार लाखों की तादाद में भक्त महाप्रभु को फॉलो करते हुए जा रहे थे वृंदावन, और महाप्रभु कहाँ पहुंचे नृत्य करते करते, रामकेली में। और रामकेली में जो राजा था नवाब हुसैन शाह, क्योंकि वो मुस्लिम राजा था और किसी को अनुमति नहीं थी किसी और प्रकार का धर्म पब्लिकली प्रैक्टिस करने की, तो उन तक ये सूचना मिली कि एक ऐसे सन्यासी आया है और इस प्रकार नित्य कर रहा है और हजारों लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो उन्होंने अपने कंसल्टेंट से पूछा, अपने मंत्रियों से, कि ये कौन है, इसके बारे में बताएं। तो केशव खान था, वो जानता था चैतन्य महाप्रभु कौन है, परंतु उन्होंने बताया कि ये साधारण भिखारी है, तो अपना कुछ बहुत भावुक होकर कीर्तन कर रहा है, इसलिए लोग भावुकता में साथ चल रहे हैं। परंतु नवाब हुसैन शाह का हृदय महाप्रभु के बारे में सुन के इतना परिवर्तित हो चुका था, उन्होंने इनको डांट लगाया कि तुम क्या नहीं क्या तुम जानते नहीं कि ये स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। और उन्होंने पूरा ऐलान घोषित किया कि जो भी महाप्रभु इस सन्यासी के किसी भी मूवमेंट में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सन्यासी जहां भी जाता है जाए, और इसको पूर्ण रूप से प्रचार करने की अनुमति है। तो इस प्रकार से महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, तब रात्रि में रूप गोस्वामी, सनातन तो डाबीर खास, शाकर मलिक और उनके भाई तीनों महाप्रभु से मिलने जाते हैं। और वो जाते हैं इस चिंता से कि ये मुस्लिम राजा है, अभी तो ये इसका मन ठीक है, परंतु कोई ऑपोजिंग पार्टी आके बताना इसका माइंड वॉश कर दे तो कब क्या ऑर्डर दे दे कुछ पता नहीं। इसलिए वो महाप्रभु को संदेश देना चाहते थे कि कृपया आप ये प्राण छोड़ के आगे बढ़ जाइए, चले जाइए। तो उन्होंने वो मैसेंजर के थ्रू मैसेज भिजवाया, और जब महाप्रभु कीर्तन करते थे तब कोई और मैसेज नहीं होता था। तो सुबह का गया हुआ प्रतीक्षा कर रहा, कब मैं मैसेज दूं, दोपहर, शाम, रात्रि हो गई, महाप्रभु तब से नॉन स्टॉप कीर्तन चल रहा है। तो वो उनके जो नित्य परिकर है उनको संदेश दे के वापिस आ जाता है। तब महाप्रभु समझ जाते हैं कि सभी भक्त किसी प्रकार की चिंता में है, सभी को चिंता थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, मैं सबके हृदय में वास करता हूं, उस राजा की ऐसी क्या शक्ति है कि जो वो मेरी आज्ञा के बिना, मेरी अनुमति के बिना मुझे बुला सके या मेरे साथ कुछ कर सके। और उसके बाद महाप्रभु विश्राम करने चले जाते हैं। तो विश्राम के समय एकांत में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी अपने गले में कपड़ा बांधकर, मुंह में तिनका लिए हुए अप्रोच करते हैं नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को, और वो उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं महाप्रभु से, और वो उनको जाके पूरा प्रणाम करते हैं और अपनी दयनीय स्थिति का विस्तार से वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो आपका जन्म है, आपका प्राकट्य है, वो इसलिए हुआ है पतितों का उद्धार करने के लिए, परंतु और आपका नाम तब सार्थक होगा जब आप हमारा उद्धार करेंगे। आपने जगाई मदाई का उद्धार तो कर दिया, परंतु उनका उद्धार करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्यों, उनका जन्म एक पवित्र स्थान में नवदीप में हुआ है, उन्होंने आज तक कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था, परंतु जो हमारा जीवन है वो इतना निकृष्ट है कि जब आप हमारा उद्धार करेंगे तब आपका प्राकट्य सार्थक होगा। और इस प्रकार करके वो अलग अलग क्रंदन करने लगे। तो महाप्रभु उनकी ऐसी स्थिति को देखकर कहते हैं कि कृपया तुम अपनी इस विनम्रता को त्याग दो, तुम्हारी विनम्रता देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। और फिर महाप्रभु ने उनको नाम दिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप पर कृष्ण की कृपा होगी। उसके बाद महाप्रभु जाते हैं, उसके बाद महाप्रभु कनाई नटशाला जाते हैं और वहां से वो वापस पुरी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनको सलाह दी थी कि इतने लोगों के साथ वृंदावन जाना ठीक नहीं है, आप जाना है तो आप अकेले जाइए, क्योंकि जितने साथ में लोग चलते थे, सारे जो साथ में पेड़ पौधे हैं कभी कभी उनको ट्रैम्पल कर देते थे, या जो महाप्रभु का मूड था उनको नहीं समझ पाते थे। तो महाप्रभु ने उनकी बात को बहुत गंभीरता से लिया और वापस पुरी चले गए। उसके बाद जब महाप्रभु का निर्देश आया वृंदावन जाने के लिए, तो रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी इन्होंने अपने नौकरी से रिजाइन कर दिया और वो चले गए श्री वृंदावन धाम की ओर। और बताते हैं जब उन्होंने रिजाइन किया उनको इतना वेल्थ मिला, ये दूसरा ऐसा उदाहरण है जो श्रीला प्रभुपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जीवन से अक्सर उद्धृत करते थे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने धन का इस्तेमाल किया, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया। उनकी इतना धन था कि पूरी नाव सोने के मुद्राओं से भर गई थी। तो 50% उन्होंने इस्तेमाल किया किसके लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए। 25% उन्होंने किसके लिए किया, किसके लिए? अपने परिवार, सब सगे संबंधियों, उनको दिया। और 25% किसके लिए रखा? पर्सनल इमरजेंसी के लिए। और साथ ही साथ वो पत्र लिख गए सनातन गोस्वामी को कि आपके लिए 10,000 मुद्राएं मैं इस व्यक्ति के पास छोड़ के जा रहा हूं। सनातन गोस्वामी तुरंत रिटायर नहीं कर पाए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, सारा दायित्व उनके पास था। परंतु धीरे धीरे उनकी भी रुचि खत्म हुई और उन्होंने भी कोर्ट आना बंद कर दिया। क्या बहाना दिया? कि मैं बहुत बीमार हूं। और अपने घर पर सभी ब्राह्मणों को बुलाकर श्रीमद् भागवतम पे चर्चा होती थी। और जो उनका राजा है, बिना सनातन गोस्वामी के उस पर प्रेशर और बढ़ गया था। रूप गोस्वामी ऑलरेडी जा चुके हैं और ये सनातन गोस्वामी कोर्ट में आ नहीं रहे। अपना डॉक्टर उन्होंने भेजा कि आप जाइए, चेक करके आइए सनातन गोस्वामी को क्या हुआ है। तो जब डॉक्टर गया, देखा कि सनातन गोस्वामी बिल्कुल फिट है और घर पे सभी सभाओं में श्रीमद् भागवतम पे चर्चा हो रही है। ये आके वापस उन्होंने राजा को सूचना दी तो राजा बहुत क्रोध होके आया वापस और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता हूं, अगर छोटा भाई ऐसे करेगा तो बड़े भाई का हृदय टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आओ, मैं पुरी जा रहा हूं पुरी पे कब्जा करने के लिए। तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि अब मेरे से आपकी सेवा नहीं होगी, आप भगवान के प्रतिनिधि हैं, आप राजा हैं, उस गद्दी पर हैं, आप जैसा उचित समझे आप मेरे साथ कर सकते हैं। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर पास किए कि इनको अरेस्ट किया जाए। उनको अरेस्ट करके वो चले गए उड़ीसा पे कब्जा करने के लिए। फिर रूप गोस्वामी के पास उनके पास पत्र आया और उन्होंने बताया कि कैसे वो उन मुद्राओं का इस्तेमाल करके तुरंत बाहर निकले और वृंदावन की ओर जाए। और जो वहां का जेलर था तो एक बार उन्होंने जेलर को कहा, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने रखी और उनको कहा कि मुझे यहां से जाने दो, मेरी बहुत इच्छा है मेक्का जाने की, मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूं मेक्का, और वहां पर अगर मैं जाऊंगा तो जितना पुण्य है वो आपको भी प्राप्त होगा। तो उसने कहा कि मैं जाने तो दूं परंतु जब राजा वापस आएगा वो मुझे जान से मार देगा। तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप राजा को कह देना कि ये शौच क्रिया करने के लिए गंगा तट पर गया था और अपने हथकड़ियों समेत ये गंगा में डूब गया, मैंने बहुत देर तक उनको खोजा परंतु गंगा में बह गया, और मैं वादा करता हूं मैं इस प्रांत में कभी लौट के नहीं आऊंगा, मैं तुरंत बाहर चला जाऊंगा। और साथ में उन्होंने 2,000 मुद्राएं और ऐड करके रख दी, 7,000 मुद्राएं। तो अंदर से डर भी रहा था कि अभी तो ये कैदी है, कल को मिनिस्टर बन जाए और अभी मैं नहीं मानूं तो ये मेरे को बाद में मेरे साथ ऐसे करेगा। और साथ में उसको इतना लालच आ गया था और इतना प्रेमवश उन्होंने उनको कन्विंस किया था कि उसने उनको उसी रात रिहा कर दिया। तो यहां पर एक शिक्षा और देते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि किस प्रकार से अब देखा जाए उस भक्त ने क्या सच बोला था, झूठ बोला था, क्या उनको मेक्का जाना था। और उन्होंने उसको भी इंस्पायर किया कि तुम भी झूठ बोल देना। तो कोई कह सकता है ये एक भक्त तो हमेशा सत्यता का पालन करता है, इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में पालन किया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया किस प्रकार से परम सत्य की सेवा करने के लिए उस सिचुएशन में उन्होंने बहुत एक्सपर्टली डील किया। तो जो एक भक्त है वो बहुत मूर्ख नहीं होता प्रैक्टिकल डीलिंग्स में, और हम आगे भी देखेंगे किस प्रकार से जब भागे तो आगे क्या क्या होता है। परंतु साथ ही साथ शिला प्रभुपाद लिखते हैं इस ये चीज बहुत मिसयूज के भी प्रोन है। भक्त हर चीज करेगा कि मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं और जो साधारण नैतिकता है उसका भी पालन नहीं करता। तो ये बहुत ही इसके लिए मैच्योर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि कृष्णा कॉन्शियस के नाम पे हम मोरालिटी की बलि चढ़ाते रहें, और ऐसा भी नहीं जहां पे जरूरत पड़े स्टैंड लेने की वहां पे वो स्टैंड ना लिया जाए। और फिर वो भागते हैं उन्हीं कैदी वस्त्रों में अपने एक सेवक के साथ जिसका नाम होता है ईशान। और भागते भागते वो कहां पहुंचते हैं? बिहार के एक प्रांत में, पटना। और वो प्रांत बहुत ही उसका इनफेमस था कि वहां चोरी डकैती बहुत होती थी, किसी भी एक रुपए के लिए भी, एक पैसे के लिए भी लोग जान से मारने को तैयार होते थे। तो शाम में वहां पे एक छोटा सा इन को हिंदी में क्या कहते हैं, मोटल को हिंदी में क्या कहते हैं, होटल टाइप वहां पे कुछ था एग्जैक्टली, हाँ सराय। तो वहां का जो मालिक था उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर था। उस एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही बता दिया जो अभी ये लोग आ रहे हैं दो लोग, इनके पास 8 स्वर्ण की मुद्राएं हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि हम इनको शय देंगे और रात में इनकी हत्या करके इनसे सारे पैसे हड़प लेंगे। तो यहां शिला प्रभुपाद एक बहुत और रुचिकर लिखते हैं, कह रहे उस समय एस्ट्रोलॉजी इतना कॉमन था कि ऐसा व्यक्ति भी अपने साथ एस्ट्रोलॉजर रखता था और उसने बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर दिया कि इनके पास क्या है। तो बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक वास्तविकता में एक एक्चुअल साइंस है। आजकल लोग नहीं है इसको ठीक से प्रैक्टिस करने वाले, इसलिए बहुत धोखाधड़ी होती है, परंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार एस्ट्रोलॉजी एक बोनाफाइड साइंस है। और जब ये जाते हैं तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है, उनको कहता है आप स्नान करके आइए, मैं आपको खाना दूंगा करूंगा। तो जब स्नान करने जाते हैं तो अब देखिए सनातन गोस्वामी कौन थे, इस पूरी पृथ्वी के जो सबसे अमीर प्रांत था उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनकी योग्यता क्या थी, वो बहुत दक्ष थे डिप्लोमेसी में। तो वो समझ गए कि मैं अनजान व्यक्ति हूं और मेरे साथ ये इतना सुंदर व्यवहार कर रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ हेतु है। तो उसने अपने सेवक से पूछा, ईशान से, तुम्हारे पास कुछ, क्या तुम कुछ धन लेकर आए हो? उसने कहा हाँ, मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, हालांकि 8 थी, उसने बोला मेरे पास 7 है। तो उसने तुरंत वो स्वर्ण मुद्राएं उनसे ली और उस मालिक के पास गया और उनको दे दिया कि ये आप रखिए और कृपया करके मुझे बस मेरी सहायता कर दीजिए इस आगे इस पहाड़ी थी उसको पार करने के लिए। और जब उसने ऐसा व्यवहार देखा, उसने स्वतः वो मेरे को मुद्राएं दे रहा है, उसका हृदय पिघल गया। उसने कहा कि वो इतना प्रभावित हो गया कि उसने कहा मुझे मुद्राएं नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। तो उसने कहा अगर मैं रखूंगा, और उसने बताया कि कैसे मेरा प्लान था आज रात को तुम्हें जान से मारने का और ये हड़पने का। तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरे से मुद्रा नहीं लोगे तो कल को कोई और मेरे को मार के का प्रयास करेगा, तो तुम ही रख लो, बस मेरी एक सहायता कर दो ये जगह को पार करने के लिए। और उसने इसी प्रकार किया, पर उसने बताया कि तुम्हारे पास तो 8 स्वर्ण मुद्राएं थे। तो उन्होंने दोबारा ईशान से पूछा कि तुम्हारे पास और स्वर्ण मुद्रा है? उसने कहा हाँ, 1 है। तो उसने कहा कि ठीक है तुम ये लो और वापस जाओ। और वो उनको पार कराते हैं उस जगह को। और चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि अब जो सनातन गोस्वामी की स्थिति थी, जब उनके पास 1 भी रुपया 1 भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है बाह्य रूप से, उस वस्त्रों में अकेले चैतन्य महाप्रभु के ओर जा रहे हैं। तो बताते हैं उनके जो आनंद की सीमा थी उसकी गणना नहीं की जा सकती। भगवान कृष्ण किनको प्राप्त होते हैं, कुंती महारानी क्या प्रार्थना में कहती हैं, अकिंचन नमो अकिंचन वित्ताय, जो पूर्ण रूप से अकिंचन है। तो अब सनातन गोस्वामी उस स्थिति में चलना शुरू करते हैं, बहुत भागना शुरू करते हैं, और करते करते पहुंचते हैं हाजीपुर। हाजीपुर में उनके जो बहन का पति है तो वो आए होते हैं घोड़े खरीदने के लिए। और उनका नाम क्या था, श्रीकांत। श्रीकांत से उनकी वहां मुलाकात होती है, श्रीकांत उनको देखते हैं, उनके पास जाते हैं और वो उनको अपनी कहानी बताते हैं। कहते हैं कम से कम 2 दिन तो रुको। अब सोचिए कोई ऐसी स्थिति में, उसका कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, भागा हुआ है, और ऐसा ऑफर मिल रहा है कि 2 दिन तो रुको। परंतु इतने ललायत है महाप्रभु से मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन तो क्या एक पल यहां नहीं रुकूंगा। और उन्होंने कहा जाते जाते कम से कम ये एक ब्लैंकेट कंबल उनको दिया बहुत सुंदर सा, कि कम से कम ये स्वीकार करके चले जाओ। तो उन्होंने वो कंबल लिया और फिर वो आगे गए। और जाते करते कहां पहुंचे वो, वाराणसी। अतः महाप्रभु वृंदावन लौट के वापस आ रहे थे और उनको सूचना मिली कि महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर पर रुके हुए हैं। तो सनातन गोस्वामी उनके घर पे जाते हैं और घर के बाहर जाके बाहर बस बैठ जाते हैं, ये उनकी विनम्रता होती है। तो महाप्रभु अंतर्यामी है, समझ जाते हैं कि मेरा प्रिय भक्त आया है। और वहां पे चंद्रशेखर आचार्य को कहते हैं बाहर जाइए और उनको, कोई वैष्णव है आया है आपके दरवाजे पे, उनको बुला के आइए। तो बाहर जाते हैं, उनका वेशभूषा कैसा था, पूरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े सारे फटे हुए थे, बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, मुंह शरीर पूरा सूख गया था, और उन्हें देखने से लग रहा था कोई मुस्लिम बाबा है। तो अंदर गए कि महाप्रभु कोई नहीं है, उनका कोई बैठा है, कह रहे हाँ एक व्यक्ति है, कह रहा अच्छा उसी को ले आओ। तो जब वो गए उनको बुलाया अंदर और तब देखते हैं तब महाप्रभु और सनातन गोस्वामी जो इतने वर्षों से इतना प्रगाढ़ विरह महसूस कर रहे थे, वो लौल्यम लेके वो चुप कर रहे थे, उनका जो जीवन का परम लक्ष्य एक तरह से महाप्रभु के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और महाप्रभु तुरंत उनको आलिंगन कर लेते हैं और उनका जो मीटिंग है बताते हैं कि महाप्रभु अपने अश्रुओं से उनका अभिषेक कर रहे थे और सनातन गोस्वामी अपने अश्रुओं से महाप्रभु का अभिषेक कर रहे थे। और चंद्रशेखर आचार्य ये देखकर बहुत विस्मित रह जाते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि इनको जाइए, इनका शेविंग कीजिए, इनको नए कपड़े दीजिए। और शिला प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद डिड नॉट लाइक हिप्पी लाइफस्टाइल, देयरफॉर ही सेड हिम टू शेव। तो प्रभुपाद को पसंद नहीं था कि कोई बहुत दाढ़ी बढ़ाए और हिप्पियों की तरह रहे, तो इसलिए प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप शेव करके आइए। प्रभुपाद वहां तात्पर्य में लिखते हैं, तो वहां पे गए, पूरा तैयार हुए और उन्होंने उनको नए कपड़े दिए, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा आपके कोई पुरानी धोती है, तो पुरानी धोती ली, उसको आधा फाड़ा, आधा ऊपर और अपना कोपिन और नीचे का वस्त्र बना के उसी को पहना। और तपन मिश्रा के घर वो प्रसाद माने जाते थे, तो महाप्रभु के साथ प्रसाद नहीं पाते थे, बाहर इंतजार करते थे। जब महाप्रभु पा लेते तो उनका प्रसाद वहां मिलता था। तो एक ब्राह्मण आए, उन्होंने उनको कहा कि आप प्रतिदिन आप हमारे घर पे प्रसाद पाइए। तो उन्होंने कहा मैं आपके घर प्रसाद नहीं पाऊंगा, मैं तो मधुकरी करूंगा। तो जब महाप्रभु ने इस बात को सुना तो बताते महाप्रभु का आनंद अनंत गुना बढ़ गया, उनके वैराग्य और किस प्रकार से संन्यास आश्रम के नियमों का पालन कर रहे थे ये देखकर। परंतु फिर भी महाप्रभु ने उनके एक बार, सिर्फ एक बार उन्होंने उनके कंबल की ओर एक सेकंड के लिए देखा। और सनातन गोस्वामी इतने फाइन थे डीलिंग्स में, इतने सूक्ष्म चीजों को कैच करने के लिए, वो समझ गए कि महाप्रभु इससे प्रसन्न नहीं है। तो नदी के किनारे गए, गंगा के किनारे, एक पुराने भिखारी का जो पुराना कंबल था उसने कहा मेरा नया कंबल ले लो और अपना पुराना कंबल दे दो। उन्होंने कहा कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं असली में ऐसा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको कंबल एक्सचेंज किया और लेकर आए। और जब महाप्रभु ने उसके इस कंबल को देखा तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या, आपने क्यों बदला, आपके उस नया कंबल को क्या हुआ। तो उन्होंने पूरी कथा बताई। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने आपकी जो आखिरी आसक्ति थी इस भौतिक जगत में उससे आपको मुक्त कर दिया है। और एक जो दक्ष चिकित्सक है वो कोई भी ऐसा कारण नहीं छोड़ता जिससे बीमारी दोबारा बढ़ी जा सके। और महाप्रभु उनके इस वैराग्य को देख के बहुत प्रसन्न हुए। और वहीं पर उन्होंने 2 महीने तक प्रतिदिन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते थे। और उसी मीटिंग के दौरान सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से जाके ये प्रश्न पूछा कि हालांकि लोग मुझे बहुत बड़ा बड़ा पंडित कहते हैं, मुझे बहुत बड़ा मान देते हैं, परंतु मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं ये भी नहीं जानता मैं कौन हूं और 3 प्रकार के ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। तो अपने एक लेक्चर में बहुत ही शिला प्रभुपाद एक बहुत इंटरेस्टिंग इस पास्ट टाइम को प्रभुपाद ने बहुत ही बार कोट किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टीका देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा हु एम आई, कि मैं कौन हूं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं अपने बल पे ये पहचान जाऊंगा, ये जान जाऊंगा कि मैं कौन हूं। प्रभुपाद कहते हैं सबसे बड़ी मूर्खता है और ऐसा करना असंभव है। जब तक कोई आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित व्यक्ति की जब तक शरण नहीं ली जाए तब तक ये जानना कि मैं कौन हूं ये संभव नहीं है। और उन्होंने बताया सनातन गोस्वामी के इस चरित्र से किस तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न है ना सेवया, किस प्रकार से महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु की शरण ली। और सनातन गोस्वामी को संबंध आचार्य भी बताया गया है, वैदिक सिद्धांत 3 भागों में बटा हुआ है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान उनके जो डीटीज है वो है मदन मोहन, श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी मदन मोहन की आराधना करते थे और उनको संबंध आचार्य भी बताया गया है। और वहीं पर महाप्रभु ने उनको अलग अलग विषयों पर ज्ञान दिया कि किस प्रकार से जो जीव है वो भौतिक जगत में किस प्रकार से वो बद्ध होता है, संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया, शास्त्रों का क्या उद्देश्य है, ब्रह्म परमात्मा भगवान फीचर के बारे में, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश तद एकात्म प्रभाव विलास जितने भगवान के रूप हैं इन पे ज्ञान दिया, वैभव विलास रूप पे, पुरुष अवतार अलग अलग प्रकार के भगवान के जो अवतार हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मन अवतार, युग अवतार, शक्तावेश अवतार और कृष्ण की नित्य लीलाएं और किस प्रकार से भगवान कृष्ण पूर्ण है। 2 महीने तक महाप्रभु ने उन पर ज्ञान दिया और तब उनको निर्देश दिया कि आप जाओ वृंदावन और वृंदावन जाकर इन शिक्षा इनको कंपाइल करो जो मैंने आपको बताया ग्रंथों की फॉर्म में, वहां की जो दिव्य लीलाएं हैं उनको दोबारा से उजागर करो और इस भक्ति मार्ग का प्रचार करो। तब सनातन गोस्वामी बहुत बिरा अनुभव करके वृंदावन जाते हैं तो वहां पर जाके जब वो वृंदावन जाते हैं तो चैतन्य चरित्र में अलग चैप्टर्स हैं कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी वृंदावन से फिर पुरी जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए और पुरी में उनकी क्या क्या लीलाएं थी, ये बहुत ही विशाल है, हालांकि 9 बज गए हैं इसे कहें तो मुख्य कुछ संक्षिप्त में उनके जीवन से जो शिक्षाएं, एक जो शिला प्रभुपाद लिखते हैं स्वास्थ्य को लेकर, दूसरा पर उपकार को लेकर, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, कि हालांकि वो सबसे रिच और सबसे अपर क्लास को बिलोंग करते थे परंतु उन्होंने उनका किस प्रकार त्याग दिया जैसे कोई मल त्यागता है, किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए, पर उपकार के लिए। सनातन गोस्वामी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है किस प्रकार से हम स्वयं को जान सकते हैं, इसका क्या विधि है, अगर किसी ने जानना है हु एम आई, किस प्रकार से जाना जा सकता है एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेकर। जब सनातन गोस्वामी का महाप्रभु गुणगान करते थे तो इस प्रकार से गुणगान करते थे जैसे महाप्रभु के 5 मुख हों, और जब भक्तगण सनातन गोस्वामी का गुणगान सुनते थे उनका क्या प्रतिक्रिया होती थी, वो द्वेष नहीं करते थे, उनका आनंद भी असीमित रूप से बढ़ जाता था। तो एक शिक्षा ये ले सकते हैं कि जब हम किसी वैष्णव का गुणगान सुनते हैं तो किस प्रकार से जब हम खुश होते हैं, सिर्फ किसी की एडवांसमेंट में खुश रहने से हम खुद भक्ति में प्रगति कर जाते हैं। शिला प्रभुपाद एक उदाहरण और देते हैं, एक भक्त ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा और उन्हें बताया कि किस प्रकार से उनके पास रहने के लिए और प्रचार करने के लिए स्थान नहीं है। प्रभुपाद उनको लिखते हैं, हमारे गुरु हैं सनातन गोस्वामी, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में रहते थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्लेस और नो प्लेस, द प्रीचिंग शुड गो ऑन इन अल्टीमेट इन विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कृष्णा विल प्रोवाइड यू विथ प्लेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर है, उसमें लिखते हैं सनातन गोस्वामी एक पेड़ के नीचे रहते थे और जो अपनी ड्यूटीज थी पेड़ से लटका के रखते थे, परंतु फिर भी वो कृष्ण की निरंतर सेवा में नियुक्त रहते थे। तो कहते हैं इसलिए आपके पास जो जगह है या नहीं है, आपका प्रचार कार्य नहीं रुकना चाहिए। अक्सर शिला प्रभुपाद को यह आलोचना सहनी पड़ती थी कि किस प्रकार से वो पाश्चात्य देश के जो लोग हैं जो वैदिक शास्त्र के अनुसार म्लेच्छा यवन कैटेगरी में आते हैं, शूद्र कैटेगरी में आते हैं, उनको वो सेकंड इनिशिएशन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद सनातन गोस्वामी के श्लोक उदित करते हुए इसका रिफ्यूटेशन करते थे और श्रीमद् भागवतम से कुछ अन्य श्लोकों का और सनातन गोस्वामी के श्लोक का उदित करते थे कि किस प्रकार से अगर कोई बोनाफाइड तरीके से इनिशिएट हुआ है योग्यता के आधार पर तो वो परिवर्तित हो सकता है वैष्णवता के रूप में, और उदाहरण देते थे बेल मेटल का। बेल मेटल जिस प्रकार से कांस का कांस जिस प्रकार से सोने में परिवर्तित हो सकता है, इसकी एक विधि है, तो अगर ठीक विधि से इनिशिएट किया जाए और वो सभी नियमों का पालन कर रहा है तो वो योग्य वैष्णव बनता है। एक उनके जीवन से पहलू देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान और भक्त में इतना अंतरंग संबंध है, उनकी मीटिंग से और महाप्रभु पुरी में, उनका हालांकि शरीर में पूरा पस था फिर भी महाप्रभु आके उनको आलिंगन करते थे और कहते थे जिस प्रकार से एक माता को अपने बच्चे का जब मल मूत्र त्यागता है उसको कैसा प्रतीत होता है, जैसे चंदन हो, तो उसी प्रकार से जो भगवान है उनका अपने भक्त को इतने प्रिय है, हालांकि उनका बाह्य शरीर सारा खून निकल रहा है, सारा पस निकल रहा है, और वो बाहर जाके जबरदस्ती उनको आलिंगन कर लेते थे। और आखिरी चीज, जब वो वृंदावन में रहते थे तो इतने दक्ष थे काउंसलिंग में, पूरे व्रजवासियों के वो गुरु थे एक प्रकार से। एक दिन एक गांव में जाते थे और सारे भक्त इतने खुश होते थे सनातन गोस्वामी को रिसीव करते हुए, और सनातन गोस्वामी उनसे क्या प्रश्न पूछते थे, बिल्कुल डेली जो उनकी लाइफ में एक्टिविटीज हैं, आपकी गायें कैसी हैं, किस प्रकार की खेती कर रहे हो, क्या आपको प्रॉब्लम है, उस प्रकार की वो काउंसिल करते थे। और जब वो नेक्स्ट डे किसी और जाते थे तो पूरा का पूरा गांव उनके साथ जाता था, इतना प्रेम करता था। तो नेक्स्ट गांव में उनका वेलकम होता था और प्रीवियस गांव के लोग विरह, बहुत विरह महसूस करते थे। और उनके से संबंधित बहुत सारी लीलाएं हैं, किस प्रकार से भगवान शिव से संबंधित, चकलेश्वर महादेव के स्थान पर रहते थे, तो एक दिन वो छोड़ के जा रहे थे, वहां बहुत मच्छर थे, तो एक भगवान शिव ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने कहा कि आप इस जगह को मत छोड़िए, एक रात और वहां पे रुक जाइए। तो वो उनका स्वभाव इतना विनम्र था, किसी की रिक्वेस्ट रिफ्यूज नहीं कर पाते थे। तो एक स्थान, एक दिन रात और रहे और उस कोई सारे वहां से मच्छर चले गए थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ अलग उनकी लीलाएं हैं, रूप गोस्वामी के साथ अलग लीलाएं हैं। तो आज के दिन उनका तिरुभाव दिवस है और अपने जीवन के अंतिम काल में वो चक्र तीर्थ में ही रहते थे, जहाँ पे चकलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहीं पर रहते थे। और प्रतिदिन वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, एवरी डे पूरी परिक्रमा वो करते थे। और जीवन के अंत में इतने बूढ़े हो गए थे कि वो परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान कृष्ण स्वयं एक बालक का रूप धारण करके आए और उन्होंने उनको मना किया परिक्रमा करने से। और उन्होंने कहा जब तक भगवान कृष्ण स्वयं आके मुझे ये आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं नहीं करूंगा। तो वो बालक गया ऊपर, उनका अपने चरण कमल उस शिला पर प्रिंट किया, उसको लेकर आया सनातन गोस्वामी के साथ वापस, उसको वहां रखा और विग्रह में प्रवेश कर गया। तो समझ गए कि स्वयं भगवान कृष्ण की इच्छा है कि मैं इन शालिग्राम इस गोवर्धन शिला की परिक्रमा करूं। तो जीवन के अंत काल में वो चार बार उस गोवर्धन शिला की परिक्रमा करते थे। वो आज के समय दामोदर, राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। तो अपने जब उनका तिरुभाव हुआ तो पूरे व्रज जो मंडल मूवी है, प्रत्येक व्यक्ति उनको ग्लोरीफाई करने के लिए आया। और क्योंकि वो प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, इसलिए आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन बताते पूरे साल में सबसे ज्यादा भीड़ गोवर्धन परिक्रमा में आज के दिन होती है। कार्तिक में आखिरी दिन भी इतनी भीड़ नहीं होती जितने आज के समय भीड़ होती है। और अगर वहां किसी भी व्रजवासी से पूछेंगे आप आज के दिन क्यों गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, कहेंगे सनातन बाबा के लिए, वो उनके गुरु, सभी व्रजवासियों के गुरु माने जाते हैं। तो जो गुरु पूर्णिमा में गोवर्धन की परिक्रमा होती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि सनातन गोस्वामी जी का आज तिरुभाव दिवस है। तो आइए आज से हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे हमने ये प्यार पढ़ा था कि जो भक्ति के सारे सिद्धांत का अंतिम चरम लक्ष्य है वो हमें सनातन गोस्वामी जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो उनके जो गुण हैं, विनम्रता, उनके द्वारा दिए गए जो ग्रंथ हैं, उनके द्वारा गए जो सिद्धांत हैं, जीवन शिक्षाएं हैं, उनको पालन करने के लिए हम अपने जो फ्री विल है उसका ठीक रूप से इस्तेमाल करके प्रयास करें उसमें। और आज के दिन उनकी कृपा विशेष रूप से एक्सेसिबल है, राधा मदन मोहन में वहाँ पे उनकी समाधि है वृंदावन धाम में। जो ओरिजिनल जो उनकी ड्यूटीज थी वो अभी जयपुर करौली में है। तो उन ड्यूटीज का स्मरण करते हुए मदन मोहन जी का, सनातन गोस्वामी जी का, छठ गोस्वामी जी का, उनकी कृपा की हम याचना कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की। आज के दिन हम शिला व्यास देव जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं, आज उनका भी स्थिति है। शिला व्यास देव जी की, गुरु पूर्णिमा महा महोत्सव की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।